श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपलवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुःसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। आदिगुरवे नमः जुगादिगुरवे नमः सतगुरवे नमः श्रीगुरुदेवये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो सच्चिदानन्द भगवान् की जय। श्री स्वामी निर्मल जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जय। घट घट में व्याप्त सर्वंतर जामी प्रभु पिता परमात्मा के चरणारविंदों में चरणारविंदों का ध्यान करते हुए सर्वकाल वंदे ब्रह्मलीन वेदांत के श्री श्री स्वामी निर्मल जी महाराज जी के चरण कमलों का कोटि कोटि नमन। अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद परम वीतराग विरक्त शिरोमणि निर्मल पीठाधीश्वर श्री 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 महंत जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय स्वामी निर्मल चेतन जी महाराज तथा उपस्थित संत वृंद भक्त वृंद सबका अभिनंदन करते हैं। हम लोगों का सौभाग्य है जो हमारा परम लक्ष्य है जिसके लिए हमारे को ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है उस लक्ष्य की ओर चिंतन करते हैं। हर रोज जहां बैठ के आध्यात्मिक चर्चा श्रवण करते हैं। भक्त कबीर जी महाराज जी की पावन वाणी का हम चिंतन कर रहे हैं। कल जो कबीर जी महाराज जी ने पावन शब्द के द्वारा हमारे को पवित्र उपदेश दिया था उसमें संसारक जीवन अंदर आध्यात्मिक जो हमारी यात्रा है, उस आध्यात्मिक यात्रा में कैसे हम मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा चिंतन किया था हमने कि मन रूपी घोड़े के ऊपर असवार हो करके और विवेक वैराग्य की लगाम पकड़ के और संसारिक पदार्थों का त्याग जो है ये काठी घोड़े के ऊपर डाल करके और अपने स्वरूप का विचार रूप असवारी करेंगे और जो शांति और धैर्य रूपी रकाब के ऊपर चेत और बुद्धि रूपी पांव रख करके और तब हम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं, हमारी यात्रा की पूर्णता हो सकती है। और अपने मन को सावधान करके कबीर जी महाराज जी ने कहा कि अय मन तो मेरे कहने अनुसार चल तो फिर मैं तेरे को संसार सागर से पार कर सकता हूँ, पार सकता हूँ। यदि तुम सत्संग में वैकुंठ में नहीं आना चाहोगे तो फिर मैं आपको प्रेम के चाबुक मार करके तो उस सत्संग रूपी वैकुंठ में लाऊंगा। इस शब्द में दो पंक्ति जो अंत वाली है वो कल भूल गए। अंत में कबीर जी महाराज कहते हैं, कहत कबीर भले असवारा वेद कतेवते रह हे निरारा। कबीर जी महाराज इस शब्द की समाप्ति करते हुए कहते हैं कि जो विधि हमने ऊपर बतलाई है इस विधि के अनुसार हम जो बहुत अच्छा जो तरीका है विधि है उसके अनुसार बहुत अच्छी जो सवारी है मन रूपी सवारी उसके ऊपर असवार मन रूपी घोड़े के ऊपर हम असवार हो करके तो अपनी यात्रा की तरफ चलते हैं। जब हम यानी मन का निरोध किया तो इंद्रियों का दमन किया मन का शम किया तो संयम करके जब चिंतन करते हैं संसार की ओर से अंतर्मुख हो करके चिंतन करते हैं तो जो द्वैत के कारण झगड़े थे संसार के वो सब खत्म हो गए, उनसे हम अलग हो गए। जब तक द्वैत रहती है तो उस तक आदमी शब्द में उलझ जाता है, अनेक प्रकार के मत हैं तो उनके अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं तो उस सिद्धांत को लेकर के झगड़ता रहता है। कभी किसी की बात सुनता है तो उसके अनुसार, कभी किसी की बात सुनता है तो उसके पीछे, इस प्रकार संसार में रहते हुए जब तक मन में द्वैत है स्वरूप का चिंतन नहीं होता तब तक प्रपंच का ही चिंतन होता रहता है। तो जब अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है अब कबीर जी महाराज कहते हैं हम मन रूपी घोड़े के ऊपर असवार हो गए हैं तो अपने स्वरूप का चिंतन करते हैं, इसलिए वेद कतेवते रह हे निरारा। अब हम वेद के सिद्धांत से और कतेव के दोनों के सिद्धांत से अलग हो गए हैं, यानी हम उसके अंदर जो अनेक प्रकार का विरोध है वाक्यों का उस विरोध में नहीं पड़ते, अब हम केवल अपना चिंतन करते हैं। क्योंकि कई प्रकार के बीच में विरोध आ जाते हैं वाक्य में, जैसे वेद में कर्मकांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है, तो जब तक समदृष्टि नहीं बनती तब तक उन वाक्यों को देख करके आदमी उलझ जाता है, झगड़े में पड़ जाता है। क्योंकि कर्मकांड का जो वाक्य है उसको पढ़ता है तो केवल कर्म में निष्ठा होने से कर्म से ही मुक्ति चाहता है, उपासना कांड के वाक्य पढ़ता है तो उपासना से मुक्ति चाहता है, तो ज्ञान कांड में जब जाता है तब पता चलता है कि कर्म और उपासना दोनों ज्ञान के सहायक हैं। कर्म से और उपासना से मुक्ति नहीं होती, केवल जिज्ञासा पैदा होती है मुक्त होने की, यदि निष्काम कर्म उपासना करेंगे तो। तो इसलिए कहते हैं अब हमारे को पता चल गया है, इसलिए हम वेद और कतेब, कतेब यानी जो इस्लाम की पुस्तकें हैं उनका अपना सिद्धांत है, वेद हमारा जो सिद्धांत है, दोनों के जो सिद्धांत के बीच में विरोध है उससे हम अलग हो गए हैं। अब हमने केवल लक्षणा से चिंतन किया है तो हम अपने स्वरूप का परमेश्वर ब्रह्म के साथ अभेद करके चिंतन करते हैं, इसलिए पंडित मुल्ला जो लिख दिया छाड़ चले, हम कछु न लिया, हम दोनों से रहित हो गए, अलग हो गए, असंग हो गए हैं। ये पावन शब्द था, इसमें दो पंक्ति केवल बच गई थी। आज का जो शब्द आ रहा है कबीर जी महाराज जी का, गौड़ी राग में गौड़ी कबीर जी, जेह मुख पांचों अमृत खाए, तेह मुख देखत लूकट लाए, एक दुख राम राय काटह मेरा, अग्न दह अर गर्भ बसेरा रहाओ, काया बिगुति बहुविध भाती, को जारे को गटले माटी, कह कहो कबीर हर चरण दिखावह, पाछे ते जम क्यों न पठावह। ये पावन शब्द है कबीर जी महाराज जी का। इसकी जो सिद्धांत की पंक्ति है, रहाओ वाली पंक्ति में कबीर जी महाराज सिद्धांत बताते हैं कि एक दुख राम राय काट हो मेरा, अग्न दह और गर्भ बसेरा, ये मेन सूत्र है कबीर जी महाराज जी के इस शब्द का। इसी के इर्द गिर्द पूरा इस शब्द का विचार है। कबीर जी महाराज कहते हैं एक बहुत बड़ा दुख है मेरे जीवन में, तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि ऐ राम, जो राम कैसे हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं, सबके प्रकाशक हैं, सबकी उत्पत्ति लयता और स्थिति का कारण है जो ब्रह्म है, जो रमण करने वाले योगी जन जिसमें रमण करते हैं, ऐसे जो राम है, उस राम को कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि एक दुख, एक बहुत बड़ा दुख है मेरे जीवन में, उस दुख की निवृत्ति चाहता हूँ। कल भी हमने में निवेदन किया था कि कई प्रकार के दुख हैं जीवन में, लेकिन सबसे बड़ा जो दुख है, और भी दुख हैं, उन सभी दुखों से सबसे बड़ा दुख क्या है, अग्न दह और गर्भ बसेरा, ये है सबसे बड़ा दुख। अग्न दह का अर्थ है कि मृत्यु, और गर्भ बसेरा का अर्थ है जन्म। ये सबसे बड़ा कबीर जी महाराज कहते मेरा एक दुख है, जन्म और मरण, ये काट दीजिए, जन्म और मरण ये दोनों काट दीजिए। जन्म मरण का दुख किसी एक का नहीं है, जितने भी आपको संपूर्ण प्रपंच दिखाई पड़ता है सबका जन्म और मरण है। तो जो कबीर जी महाराज हमारी बात बताते हैं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख है जन्म मरण का, हम संसार के जो छोटे छोटे दुख हैं उनकी निवृत्ति तो चाहते हैं। जब भी कोई रोग होता, दुख होता है तो उसका इलाज करते हैं, तुरंत उसका इलाज करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा दुख है ना, जन्म और मरण, उसकी नहीं चिंता करते कभी भी। उसके लिए ख्याल जब नहीं होता तभी तो दुख पकड़ते हैं। जब किसी को जन्म और मरण का दुख भूल जाता है तो उसको सभी रोग आकर के पकड़ लेते हैं। तो इसलिए जन्म और मरण का जो दुख है, यदि यह समाप्त हो जाएगा तो फिर संसार के बाकी दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अब जन्म और मरण किसका होता है ये देखना है हमने, कि संसार में एक सत्य है और दूसरा असत्य है। तो कभी वो कहते हैं भगवान कृष्ण महाराज कि जो सत्य है उसका कभी अभाव नहीं होता और जो असत्य है उसका कभी भाव नहीं होता। यानी जो सत्य है वो ना कभी उत्पन्न होता है ना कभी उसका नाश होता है, ना जन्म है ना मरण है, और जो असत्य है वो कभी हुआ ही नहीं। तो जन्म मरण किसका हुआ? एक आपने कई बार श्रवण किया होगा कि जब विचार करते हैं तत्ववेताओं के पास में बैठ कर के, तो पता चलता है कि जन्म मरण किसी का भी नहीं है। जातस्य हि ध्रुव मृत्युर, जातस्य हि ध्रुव मृत्युर, जो कहते हैं उत्पन्न हुआ है ना उसी की मृत्यु होती है। जातस्य हि ध्रुव मृत्युर, मृत्यु जन्म, जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसका जन्म होता है। यानी जिसका जन्म हुआ है उसी का ही मरण होता है और जिसका मरण होता है उसकी पुनः फिर उसका जन्म होता है। कबीर जी महाराज सिद्धांत देते हैं कि एक ही मेरे जीवन में सबसे बड़ा दुख है जन्म और मरण का। तो यानी ये वास्तविक है क्या? जन्म और मरण वास्तविक है? कबीर जी महाराज प्रार्थना करने हमारे को विधि बताते हैं कि जन्म और मरण के दुख के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि यह कभी ना हो। तो यदि दुख होगा तो उसकी निवृत्ति के लिए हमारे को इलाज या अनुष्ठान या प्रार्थना करनी पड़ेगी। यदि वास्तव में दुख है तो यहाँ पर वास्तविकता तो और है। व्यवहार में ऐसा मानते हैं, हम ही मानते हैं कि हमारा जन्म हुआ है, हम जन्मे हैं, हम 10 20 30 50 साल के हो गए हैं, 50 साल पहले हमारा जन्म हुआ था, ऐसा हम मान रहे हैं। तो जब जन्म है हमारा तो मरण अवश्य होगा। तो जन्म मरण का चक्कर जो है इसको समाप्त करो। एक दुख राम राय काट हो मेरा, यानी वैराग्य का उपदेश देते हैं कि जन्म और मरण के लिए यत्न करना चाहिए। जन्म मरण वास्तव में होता ही नहीं है, जो पैदा नहीं हुआ उसकी मृत्यु नहीं होती। वास्तव में यदि हम विचार करेंगे तो संसार पैदा नहीं हुआ। ये बहुत उच्च कोटि का सिद्धांत है कि संसार कभी नहीं पैदा हुआ। हम लोग उस सिद्धांत को तो नहीं पकड़ सकते, वो तो जो उत्तम लोग हैं तत्ववेत्ता उनको सिद्धांत मालूम होता है कि यह संसार कभी तीनों कालों में हुआ ही नहीं। लेकिन हम लोगों की इतनी ऊँची पकड़ नहीं है, तो हमारे लोगों के लिए समझाते हैं कि संसार में जो आपको दिखाई पड़ रही ना जितनी वस्तु, ये अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत, ये कहते हैं भगवान कृष्ण की ये जो भूत आपको दिखाई पड़ता है ना प्रपंच, ये अव्यक्त था पहले भी। जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई तब ये कहाँ था? अप्रकट था, प्रकट नहीं था, सामने नहीं था। और अव्यक्त निधनान्येव, जब इसका प्रलय हो जाएगा तब भी ये अप्रकट हो जाएगा, छिप जाएगा, पहले भी नहीं था बाद में भी नहीं था, नहीं रहेगा। ये हमारी बात नहीं, भगवान कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। हे अर्जुन, ये भूत प्राणी पहले भी नहीं थे और अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना, ऐसा जो प्रपंच है उसके लिए अर्जुन को कहते हैं शोक किस बात का, जो पहले भी नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा, मध्य में दिखाई पड़ता है, उसके लिए क्यों शोक करते हैं। यानी नहीं था ना, बीच में दिखाई पड़ता है, जो पहले नहीं होता बाद में नहीं होता, वो मध्य में भी नहीं कभी होता। जैसे रज्जू में सर्प पहले भी नहीं था, और जब हमने लाइट से प्रकाश से देख लिया रज्जू को तो सर्प तब भी नहीं है, तो मध्य में भी सर्प नहीं है, मध्य में हमारे को प्रतीत हो रहा है ना सर्प, जब वो पहले नहीं है बाद में नहीं है तो मध्य वाला भी नहीं है। उसी प्रकार जो संसार है ये बीच में केवल हमारे को प्रतीत होता है, ना पहले था ना बाद में रहता है। जो सत्य होता है वो तीनों कालों में रहता है, वह आद सच है, जुगाद सच है भी सच है, नानक होसी भी सच है, वो पहले भी सत्य था अभी भी सत्य है, लेकिन इस प्रपंच का जब प्रलय होगी इसके बाद में भी वह सत्य रहेगा। जो सत्य होता है वो तीनों कालों में रहता है, जो असत्य होता है वो मध्य में प्रतीत होता है, होता तो तीनों कालों में नहीं है, कभी होता ही नहीं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्। ये कहते हैं निर्णय करके देखा है तत्वदर्शियों ने कि सत्य का अभाव नहीं होता, असत्य का भाव नहीं होता, ये निर्णय है, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो जो मध्य में फिर ये दिखाई पड़ता है ये नहीं है, केवल दिखाई पड़ रहा है, दिखाई यानी प्रतीत हो रहा है, ये कल्पना है। तो कबीर जी महाराज कहते हैं कि हम देख लेते हैं कि हमारा ये शरीर जब नहीं था तो क्या हम पहले नहीं थे, इस शरीर से पहले भी हम थे, और इस शरीर का जब प्राणांत होगा, शरीर समाप्त होगा, तो उसके बाद भी हम रहते हैं, तो हमारा जन्म मरण कहाँ हुआ। हम तो यही कहेंगे ना, तो कबीर जी महाराज जब कहते हैं कि मेरा जन्म मरण का दुख काट दो तो हमारा भी कट जाए, तो कहते हैं कबीर जी का तात्पर्य यहाँ पर है कि जो अग्नि में जलने की मृत्यु की भ्रांति है और माता के गर्भ में आने की जन्म की भ्रांति है ना मेरी, ये मेरे को जन्म मरण के दुख का निवृत्ति क्या है, भ्रांति की निवृत्ति। मेरे को अध्यास है कि मेरा जन्म हुआ है, और मेरे को अध्यास है कि मेरी मृत्यु होगी, भय है ना हमारे को, भय से ही तो दुख होता है, वैसे तो नहीं होता, जब हमारे को कोई भय नहीं होता तो दुख भी नहीं होता, भय होता है तो तभी दुख अनुभव करते हैं। सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार भोगः, भोग यानी सुख और दुख का साक्षात होता है हमारे अंदर, होता है कब, जब भय होता है, मरने का होता है या पीटने का होता है या लूटने का होता है या जस अपजस का होता है, भय तो होता है ना, सब भय से हम डरते हैं, तो भय तब होता है जब द्वैत होती है। द्वितीयाद भई भयम भवति, द्वैत से भय होता है, तो जब हम अध्यास में पड़ जाते हैं ना कि दोनों को एक मानने लगते हैं, शरीर को और अपने आप को शरीर मानते हैं, तभी हम जन्म मरण मानते हैं, नहीं तो जड़ पदार्थ जो शरीर है उसको खुद मालूम नहीं है, जड़ को क्या मालूम है? जड़ किसको कहते हैं और चेतन किसको कहते हैं? जड़ की ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा शूतत शूतत कठिनई, ये कहते हैं तुलसीदास जी महाराज मानस में कि चेत और जड़ की ग्रंथि यानी गांठ है मेरे अंदर। यद्यपि मृषा, यद्यपि कहते हैं तो मिथ्या, वो झूठी है गांठ, शूटत कठिनई तब भी नहीं छूटती, झूठी है मिथ्या है कल्पित है तब भी छूटती नहीं है। यानी अध्यास इतना प्रबल है कि मिथ्या होने पर भी छूटता नहीं है। हमारा अध्यास इतना है कि हम विवेक कर ही नहीं पाते। तो जन्म और मरण का जो भ्रांति है ना, जो भ्रम है, अध्यास है, इसी को काटना है। जो जड़ और चेतन की बात कर रहे थे कि जड़ उसको कहते हैं जो ना अपने बारे जानता है ना दूसरे के बारे जानता है, और चेतन वह होता है जो अपने लिए भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। तो शरीर कैसा है? जड़ है, तो हम जानते हैं ना कि जब इसमें से ज्योति जो आत्मा जीवात्मा जब निकल जाता है तो ये शरीर फिर क्यों नहीं चेष्टा करता, खाता पीता नहीं, बोलता नहीं, तो जड़ हुआ ना। तो जड़ को कैसे पता चलेगा कि मेरा जन्म है कि मरण है? और चेतना जो है उसका जन्म मरण होता ही नहीं, वो तो जानता है। हम चेतन ना मान के अपने आप को जड़ मानते हैं, इसलिए हमारे को मालूम नहीं होता। हम अपने आप को जड़ के साथ अभेद कर लिया है, तो जब जड़ के साथ अपने आप को जड़ मानने लगे तो जड़ वाले धर्म हमारे में आ गए। कौन से शरीर जो है इसका धर्म क्या है? जन्म और मरण। तो जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इतना ही मानते हैं ना अपने आप को, जितना दो तीन हाथ के हम हैं, पाँच फिट के हैं, छः फिट के, इतना ही तो मानते हैं अपने आप को। तो जो इसके अंदर जो भी धर्म होगा उसको हम अपना मानेंगे। जन्म मरण किसका है? इस शरीर का होता है, शरीर पैदा हुआ है, शरीर का मरण है। तो हम अपने आप को जब शरीर मान लिया तो जन्म मरण भी मानते हैं फिर अपना। जब जन्म मरण मानते हैं तो उसका भय होता है हमारे को, तो उस भय की निवृत्ति फिर चाहते हैं हम कि जैसे कैसे हमारा ये भय दूर हो जाए। सबसे बड़ा तो कबीर जी महाराज कहते हैं कि अग्न दह और गर्भ बसेरा, ये जो जन्म और मरण का दुख है, एक दुख ये राम राय काट, ये मेरा काट दीजिए। जब हम चिंतन करते करते इस विवेक को प्राप्त होते हैं कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर शरीर के धर्म भी मेरे नहीं हैं। शरीर का धर्म है जन्म मरण। जब मैं शरीर नहीं हूँ तो ये दो धर्म है शरीर के, ये मेरे नहीं हैं। जन्म मरण किस शरीर के धर्म है? बाहर वाले शरीर के, जो स्थूल शरीर है, और भूख प्यास किसका धर्म है? प्राण का। तो जब हम चिंतन करते हैं कि प्राण मैं नहीं हूँ, क्योंकि प्राणों का मैं साक्षी हूँ, सत्ता देता हूँ प्राणों को, और तीसरी उर्मी है, तीन उर्मी है, तीन तरंगे हैं, कौन कौन सी? जन्म मरण और भूख प्यास सुख दुख। जन्म मरण स्थूल शरीर का है, भूख प्यास प्राणों का धर्म है, सुख दुख मन का धर्म है, अंतःकरण का। तो जब हम अंतःकरण नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है, प्राण नहीं है, तो ये धर्म में हमारे नहीं हैं। तो यहाँ पर कहते हैं एक जो दुख है जन्म और मरण का, वो हमारा काट दीजिए। तो जो हमारे को भ्रांति है ना जन्म मरण की, अब उसको दृष्टांत से समझाते हैं कबीर जी महाराज कि कैसे हमारे को मालूम होता है कि जन्म मरण हमारा नहीं है। इस दुख से हमने बचना है ना, तो बचेंगे कैसे? पहले तो बता दिया कि ये हमारा दुख है जन्म और मरण का, ये हमारा प्रभु पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि काट दीजिए। अब बताते हैं विधि कि ये पता कैसे चलता है। जब हम चिंतन करते हैं तो चिंतन करने के बाद कैसे पता चलता है, तो विस्तार से बताते हैं। शुरुआत करते हैं कि जेह मुख पांचों अमृत खाए, तेह मुख देखत लूकट लाए। अब बताते हैं जन्म और मरण कैसे होता है, किसका होता है। तो ये कहते हैं कि जेह मुख पांचों अमृत खाए। अब आप चिंतन कीजिए कि ये शरीर के एक शरीर का अंग है हमारा मुख, मुंह जो हमारा मुख है एक शरीर का अंग है। तो इस मुख से हम अमृत के समान जो वस्तुएं हैं वो खाते हैं। पांच वस्तुएं कहते हैं अमृत है, कौन कौन सी है? दूध है, दही है, घी है, मिश्री है और शहद है। ये सब अमृत हैं कि नहीं? तो इनको हम खाते हैं मुख से। किस लिए खाते हैं? कि हम शरीर को अपना आप मानते हैं ना, तो जब अपना आप मानते हैं शरीर को, तो शरीर को बचा के रखना चाहते हैं, शरीर को रिष्ट पुष्ट करना चाहते हैं। जब अपना आप माना है ना, तो अपने आप को हर कोई बचाना चाहता है कि मैं बचा रहूं, मैं हृष्ट पुष्ट रहूं, मैं तंदुरुस्त रहूं। तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं? अच्छी अच्छे पदार्थों का सेवन करते हैं, पांच प्रकार के अमृत। एक और बहुत अच्छी बात कही, अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर देवता, लून पंजवां पाया गिरत। ये आशा की बार में कहते हैं गुरु नानक देव जी महाराज के, पांच जो देवता हैं यही अमृत हैं, इनको हम खाते हैं हर रोज। कौन कौन? अन्न देवता। पहले अमृत कौन है? सबसे पहला अन्न, फिर पानी देवता, दूसरा अमृत क्या है? पानी, और फिर अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर यानी अग्नि देवता और नमक, और पंजवा क्या है? घृत, घी। ये जब पांच देवता मिलते हैं तो फिर क्या होता है? ता हुआ पाक पवित्र। ये हमारी रसोई बनती है इन पांचों को मिलकर के। अन्न है, जल है, अग्नि है, नमक है यानी जो हम मसाले वगैरह डालते हैं, और घी। इसको मिलकर के कहते ये अमृत तैयार होता है। ये हम खाते हैं जिस मुख से। एक मुख का ही दृष्टांत दे करके बताते हैं कि वैराग्य शरीर से कैसे होता है। वैराग्य नहीं होगा तो जन्म मरण का दुख समाप्त नहीं होगा। जिस मुख से आपने ये पांच प्रकार का अमृत खाया ना, सारी जिंदगी हर रोज खाते हैं, दूध दही घी मिश्री शहित हर रोज खाते हैं कि हम बचे रहें, तो कहते हैं ये जो जिस मुख से आपने खाया है, ये शब्द कबीर जी ने कहाँ उच्चारण किया? एक आदमी मृत्यु को प्राप्त हो गया था काशी में, मर गया था एक आदमी, उसके साथ में और भी लोग गए, तो कबीर जी भी गए थे। तो जब शमशान में उसको अग्नि लगाई ना लोगों ने, तो वहाँ पर कबीर जी महाराज ने उसकी तरफ इशारा करके संबोधन किया, ये आदमी था कि नहीं जैसे हम हैं, इसने पूरी जिंदगी इस मुख से पांच प्रकार के अमृत का सेवन किया कि नहीं, यानी स्वादिष्ट पदार्थ खाए हैं इस मुख से। तो जिस मुख से कहते इन्होंने खाया था,
तेह मुख देखत लूकट लाए। अब आपने अग्नि जब लगाई है, पूले को लगा करके जब लगाई है, तो किधर से लगाई है? मुख से, उधर से शुरू करते हैं कि नहीं? जब अग्नि लगाते तो पहले मुख को लगाते, उसी मुख से कहते आपने खाया था कि नहीं? इसने भी खाया था, हमने भी खाया है। तो कहते आप लोग विचार कीजिए कि जिस मुख से अमृत मान के खाया था ना, कि अमृत तब खाते हैं कि हम मृत्यु ना हो हमारी, तभी तो खाते हैं। तो अमृत के समान आपने इन देवताओं का भक्षण किया था, लेकिन बच नहीं पाए। सबसे पहले उसी मुख को आपने अग्नि लगाई है। जेह तेह मुख देखक लूकट लाए, उसी मुख को आपके देखते हुए ही अग्नि लगाई आपने। तो वैराग्य आना चाहिए। जब हम जाते हैं, हमने कभी चिंतन नहीं किया, हमने पता नहीं कितने मुर्दों को सपुर्दे खाक कर दिया होगा, कितनों का संस्कार कर दिया होगा, कितनों को जल प्रवाह कर दिया होगा, लेकिन वैराग्य कभी नहीं हुआ, चिंतन नहीं किया। कहते हैं कबीर जी कि पारोसी के जो हुआ तू अपने भी जान, ऐसा नहीं चिंतना। जो पड़ोसी के साथ में हुआ है वो तेरे साथ में भी होगा एक दिन। तो हम तो पड़ोसी के साथ में जब होता है तो प्रसन्न होते हैं कि अच्छा हुआ, अब ठीक रहेगा। पड़ोसी के घर में आग लगती तो हम बहुत प्रसन्न होते हैं। कबीर जी महाराज की कहते हैं कि पड़ोसी के जो हुआ तू अपने भी जान, जो पड़ोसी के साथ में हुआ है वो तेरे साथ भी होगा, इसलिए सावधान रहो। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि उनके साथ हुआ है कि नहीं। इन्होंने पांच प्रकार के यानी स्वादिष्ट पदार्थ सारी जिंदगी रस खाए हैं, जिस मुख से खाए हैं उस मुख को ही अग्नि लगाई है पहले। तो इस मुख के द्वारा पूरे शरीर का, कहते हैं कि पूरे शरीर को ही, अब खाने के बाद क्या हुआ, जिस शरीर को आपने अच्छे अच्छे पदार्थों से पालन पोषण किया था, उसका सोतन जले काठ के संगा, उसको केवल अग्नि के साथ जलना पड़ रहा है। तो जन्म किसका हुआ था? शरीर का। तो मरण किसका हुआ है? शरीर का। हमारा कहाँ हुआ? यानी जो आदमी हमारे सामने, जिसको हमने अग्नि लगाई है, उसको अग्नि लगाने के बाद भी हम कहीं मान रहे हैं, उसके शरीर को अग्नि अपने हाथ से लगाने के पश्चात भी मानते हैं कि नहीं, कि कहीं ना कहीं गया है? चिंतन तो ये करना है कि वो आदमी जब इतना ही था, सारी जिंदगी उसने कहा मैं इतना ही, अब उसके बाद उसका क्या बचा है, फिर भी हम मान रहे हैं कि कहीं गया है। लेकिन उसको तो कहते हैं कहीं गया है, अपना चिंतन नहीं करते। उसको तो कह देते हैं, उसके लिए मतलब अनुष्ठान कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, कहीं ना कहीं गया है, कहीं भटक ना जाए, लेकिन अपने लिए फिर चिंतन नहीं होता। चिंतन ये होना चाहिए कि जब इसका शरीर मरने के बाद भी जब कहीं है, तो हम अपने आप को शरीर को मानते हैं, उसके शरीर को हमने अपने हाथ से जलाया तब भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं है, तो इसका मतलब शरीर नहीं था, शरीर से अलग था वो आदमी। तो हम अपनी तरफ नहीं ख्याल करते, हम अपने को फिर शरीर मानते हैं। वही स्वादिष्ट पदार्थ हर रोज भक्षण करते हैं, भले ठगी छाल कपट से कहीं से भी लाएं, लेकिन खाते हैं ना अच्छे अच्छे पदार्थ, कि हम बचे रहें। हम बचे रहें का मतलब शरीर ही हम हैं। कहते हैं शरीर है तो सब कुछ है, कुछ भी नहीं है, यानी अपने आप को सब माना हुआ है शरीर। तो कबीर जी महाराज कहते हैं कि उसको देख के चिंतन करो कि इतने अच्छे अच्छे पदार्थ इसको खाने के बाद भी इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन इसकी मृत्यु होने के बाद भी ये अभी है, गया नहीं है कहीं। गए का सिद्धांत आप तो सब जानते हैं कि उस आदमी को छोड़ भी आते तब भी रात को स्वप्न आता है, भय आता है कि हमारे घर में भूत बन के पड़ा है। तो इसलिए चिंतन करो कि इस शरीर की मृत्यु होती है, हमारी नहीं होती है। एक दुख राम राय काटो मेरा, ये सूत्र है कि अग्न दह अर गर्भ बसेरा, अग्नि में दाह जो हो रहा है ना, अग्नि में दाह जिसका शरीर का, वो कहते हैं मेरी भ्रांति दूर कर दो कि अग्नि में जो दाह रहा हो रहा है वो तेरा नहीं हो रहा, जो माता के गर्भ में आ रहा है वो तू नहीं है, वो शरीर है माता के गर्भ में, आत्मा नहीं माता के गर्भ में आता। आत्मा तो व्यापक है, सत्यत आनंद स्वरूप है ना आत्मा, तो वो गर्भ में कैसे आएगा? गर्भ में तो शरीर आता है, पांच भौतिक जो शरीर है वो आता है। तो कहते हैं महाराज की जेह मुख पांचों अमृत खाए, तेह मुख देखत दूकट लाए। उसको देखते हुए हमने आग लगाई है, तो उससे चिंतन ये करना है कि हम शरीर नहीं हैं। जैसे इस शरीर का जन्म हुआ था, इस शरीर की मृत्यु हुई है, इसकी मृत्यु के बाद भी जो इसमें था वो कभी अभी भी है कहीं, उसी प्रकार जन्म हम जो अपना मानते हैं हमारा नहीं है, जिस मृत्यु के भय से हम डरते हैं वो मृत्यु हमारी नहीं है, वो किसकी है? शरीर की। इसलिए कहते हैं जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद। क्यों ऐसा कहते हैं? कहते हैं कि जब इस शरीर की मृत्यु होगी ना तभी मैं विदेह मुक्त हूँगा। वो इस शरीर को बीच में रुकावट मानते हैं कबीर जी कि जब तक ये शरीर है तब तक मेरे को विदेह मुक्ति का आनंद नहीं मिल रहा, बीच में रुकावट पड़ी हुई है। इसलिए कहते हैं कि जिस शरीर के मरने से लोग डरते हैं ना, मेरे को तो आनंद होगा जिस दिन ये शरीर छूटेगा, क्योंकि तब तक मैं जीवन मुक्त तो हूँ लेकिन विदेह मुक्त नहीं हूँ, बीच में रुकावट पड़ी हुई है जब तक प्रारब्ध है। इसलिए जिस मरने से लोग डरते हैं ना, उस मरने का जब मेरे को पता चला है तो मेरे को आनंद हुआ है, क्योंकि मरने ही ते पाई है। जब ये शरीर छूटेगा तो पूर्ण परमानंद, यानी अभी भी हम परमानंद में स्थित तो हैं लेकिन अभी शरीर की रुकावट है बीच में, जिस दिन ये छूट जाएगा तो फिर परम आनंद, फिर उसके बाद में ये झंझट भी समाप्त हो जाएगा, लेशा अविद्या जो है वो भी नहीं बचेगी। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि एक दुख राम राय काट मेरा, अग्न दह और गर्भ बसेरा। ये अग्नि में जलना और माता के गर्भ में आना, ये जो जन्म और मृत्यु की भ्रांति है, अध्यास है, इसको छोड़ दो कहते हैं, उस शरीर को देख करके कि उस शरीर को बचाने का प्रयास किया था ना लेकिन नहीं बचा, तो मृत्यु उसी की हुई है, जो शरीर जिसके द्वारा चल रहा था उसकी नहीं हुई। फिर और कहते हैं कि काया विभूति बहुविध भांति को जारे को गडले माती। शरीर की मरने के बाद की दशा का बयान करते हैं। एक तो कहते हैं उसको अग्नि में अपने हाथ से हमने उसके मुंह पर अग्नि लगाई है, और इस शरीर की हालत क्या होती है मरने के बाद, कितना निषिद्ध है ये बताते हैं कि काया विभूति बहुविध भांति, अनेक प्रकार के मत है ना संसार में, और अपने अपने मत का अलग अलग सिद्धांत है, मर्यादा है शरीर के लिए, कि शरीर को जीते हुए कैसे रखना है, मरने के बाद उसको कहाँ फेंकना है, क्या करना है, अलग अलग है कि नहीं। तो ये जो काया है ना कहते शरीर, ये बहुविध अनेक प्रकार से क्या होता है, खराब होता है, इसकी दुर्दशा होती है। क्या होता है? को जारे, जब ये शरीर मर जाता है तो जो हमारा धर्म है उसमें क्या है, इसका संस्कार करना चाहिए, और जो इस्लाम धर्म है उसमें क्या है कि इसको दबाते हैं ना, सुपुर्दे खाक करते हैं, और अलेक कई लोग कैसा करते हैं, जो ईसाई लोग हैं बॉम्बे वगैरह में जाओ तो वो क्या करते हैं, डाल देते हैं जानवरों को खाने के लिए डाल देते हैं। और एक ऐसा भी मत है कि वो जब आदमी मर जाता तो उसको वृक्ष पर लटका देते हैं, और कई लोग यूपी में हम रहते थे, हमने देखा जो आदमी मरता ना उसको 10-20 आदमी डंडा लेके अच्छी तरह पीटते हैं, हमने देखा है, मुर्दे को लेकर के बहुत जोर जोर से पीटते हैं। अपनी अपनी सबकी जो है ना, वो जैसा उनको किसी ने बताया वैसा करते हैं। तो कबीर जी कहते हैं इस शरीर की हालत देखो आप कि ये मरने के बाद इसको लोग वो जा रहे, कोई तो जला देता है और को गाड़ ले माटी, कोई मिट्टी में गाड़ देता है। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? जो जला देते हैं ना, उनको अपने सिद्धांत से ये मालूम है कि एक बार ही ये शरीर मिलता है, उसके बाद फिर जब ये शरीर खत्म हो जाएगा दूसरा शरीर मिलेगा, इसलिए वो शरीर को समाप्त कर देते हैं, जला देते हैं, भस्म कर देते हैं कि अब दोबारा नहीं मिलेगा और मिलेगा दूसरा। मुसलमान जो इस्लाम धर्म है वो क्यों नहीं जलाते, क्यों गाड़ देते हैं, पृथ्वी में रखते हैं कि नहीं? वो कहते हैं जब परलय होगी ना, उस समय इसकी हड्डियाँ इकट्ठी करके इसको फिर इसके अंदर फिर रूह आएगी तो इसी शरीर से फिर भोगेगा, फिर इसको भोग मिलेगा, इसलिए उसको रखते हैं वो कि इज़राइल जो आएगा उस समय इसको उठा करके इसकी हड्डियाँ इकट्ठी करके इसको फिर इसमें जीवात्मा आएगी, फिर भोग भोगने के लिए इसको मिलेगा। इसलिए ऐसा मान के को जा रे को गढ़ ले मट्टी, कोई जला देता है, कोई दबा देता है, कोई जल प्रवाह कर देते हैं, यानी ये शरीर ऐसे खराब होता है। एक दज्जे है, एक दबिय है, एक ना कुत्ते खाहे, ये लिखा है। दज्जे है यानी एक ऐसे जो जला देते हैं, एक दबिय है, एक दबा देते हैं, एक ना कुत्ते खाहे, एक को ऐसा छोड़ देते हैं जानवर खाते हैं, एक पानी बिच उसटिय है, एक जो है जल प्रवाह कर देते हैं, यानी इस शरीर का ऐसा हालत इसकी होती है। तो कहते हैं ऐसा जो शरीर है उसके लिए आप सारी जिंदगी उसके अध्यास में पड़े रहते हो। ये जो हमारा शरीर के साथ अध्यास है ना, इसको काटो। जन्म मरण तो हमारा अध्यास के कारण प्रतीत होता है, वैसे जन्म मरण हमारा नहीं ना है, शरीर का है। यदि हम अपना मानते हैं तो अध्यास भ्रांति के कारण मानते हैं। तो कहते हमारी भ्रांति दूर करो जन्म मरण की। कहो कबीर हर चरण दिखावो। कैसे? कबीर जी महाराज कहते हैं कि अपने चरण दिखावो, मेरे को अपना दर्शन दीजिए, यानी साक्षात्कार हो जाए आपका चरण। यहाँ पर भक्ति की बात भी करते हैं कि जब आपके चरण कमलों का प्यार होगा, प्रीति होगी, चरणों का हम दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं कि नहीं? कहो कबीर हर, हरि को कहते हैं कि आप अपने चरणों का दर्शन हमारे को कृपा करके दिखाइए, चरण दिखाइए अपने। यानी चरण से क्या लेना है, पूरा स्वरूप की बात करते हैं। जब भी हमारी श्रद्धा होती है तो हम माथा कहाँ टेकते हैं, चरणों पर, सिर पर नहीं टेकते, चरणों पर टेकते हैं। चरणों पर माथा टेकने का मतलब क्या होता है? झुकना, निम्रता, गरीबी। जो झुकता नहीं है उसको कहते हैं आप हमारे सिर पर बैठ जाओगे, क्या हमारे सिर पर बैठोगे? जो अहंकार में होता है उसको हम यही कहते हैं ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि हरि के चरण यानी हरि का दर्शन यदि चाहते हैं तो क्या चाहिए? निम्रता, गरीबी चाहिए। तो हरि के पास प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर संतोष है, गरीबी है, क्षमा है, निम्रता है, ऐसे सदैव जो हमारे अंदर आप दैवी संपत्ति दो, उस दैवी संपत्ति से हम चिंतन कर सकते हैं। आसुरी संपदा जब तक रहती है चिंतन नहीं होता, सुमति नहीं आती। जहाँ सुमति है वहाँ कोई विपत्ति नहीं, जहाँ कुमति है वहाँ अपत्ति ही अपत्ति है। तो कहते हैं चरण दिखावो, पहले आप हमारे अंदर दैवी संपदा बख्शो, हमारे को चिंतन करने का बल दो। तो जब हम चिंतन करेंगे यानी आपका दर्शन हो जाएगा तो फिर पाछे ते जम क्यों ना पठावो, उसके बाद भले कहते जम को भेज दो, कोई बात नहीं, फिर नहीं कुछ होने वाला। पहले आपका जब दर्शन हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, तो फिर भले कोई भी आ जाए, लेकिन जब हो जाता है ना दर्शन, तो फिर कभी जम का कोई मतलब ही नहीं है। कबीर मेरी बुद्ध को जम ना करे तिस्कार। कहते हैं कि जो मेरी बुद्ध को, जो मेरा ज्ञान है ना, जो मेरा स्वरूप है, जम ना करे तिस्कार, उसका तो कहते जमराज भी तिरस्कार नहीं कर सकता। मेरी बुद्ध को यानी मेरे ज्ञान स्वरूप को जम भी तिरस्कार नहीं कर सकता। क्यों? जिन एह जमुआ सिरजिया, जिसने इस जमराज को बनाया है ना, सो जपया परवदगार। मैंने उसका चिंतन किया है जिसको इसने बना, जिसने इसको बनाया है, अब ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी जन्म मरण अब मेरा नहीं होगा, क्योंकि जन्म मरण जिसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है ना, जन्म और मरण जिसके द्वारा हमारे को प्रतीत होता है, वो ज्ञान, वो जो स्वामी मालिक ब्रह्म है, उसका मैंने चिंतन किया। इसलिए जम ना करे तिस्कार, अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहो कबीर हर चरण दिखावो, पहले अपना साक्षात्कार जब दोगे तो पाछे ते जम क्यों ना पठावो। अपने चरणों की भक्ति हमारे को दीजिए, प्रेमा भक्ति दीजिए। प्रेमा भक्ति यानी एकत्व भक्ति, एकत्व भक्ति, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का मतलब है कि जो त्रिपुटी है ना उसको छोड़ के, जो स्वामी सेवक भाव है उसको छोड़ के, यानी अपने आप को अभेद चिंतन करना। भक्ति का अर्थ है ध्यान। किसका ध्यान? अभेद ध्यान। ध्यान का अर्थ है चिंतन। ध्यान ध्याता ध्येय करके नहीं, ध्याता ध्यान ध्येय त्रिपुटी रहती है तो एकत्व दर्शन नहीं होता। अपना यानी चिंतन, केवल स्वरूप का चिंतन। ऐसा चिंतन मेरे को आप दिखाइए। तो उसके बाद कहते हैं संतन मोको पूजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा, धर्म राय अब कहाँ करेगो जो सग फाट्यो सगलो नेखा। और महापुरुषों ने अब मेरे को पूंजी दे दी है, नाम की, भक्ति की, चिंतन की। अब मेरे अंदर शक्ति है, बल है चिंतन करने का। तो अब उतरिया मन का धोखा, जो मन के अंदर धोखा यानी संशय था ना, जन्म मरण का, सुख दुख का, भूख प्यास का, पुण्य पापी होने का, ऊंच नीच का, जो था ना स्त्री पुरुष का, छोटे बड़े का, जितना संशय था ना मेरे अंदर, अब उतरे, अब नहीं है। क्योंकि संतों ने मेरे को ऐसी पूंजी दी है, ऐसा बल दिया है चिंतन का, कि उसके द्वारा अब संशय नहीं रहा। कौन सी पूंजी है? यानी दैवी संपदा मेरे अंदर है, सहजता है, शांति है, धैर्य है, अब संशय नहीं बचा। क्योंकि संशय जब तक है तब तक निवृत्त नहीं होती, भ्रांति की निवृत्ति तब होती जब सहजता शांति आती है, दैवी संपदा से चिंतन करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अब पाछे ते जम क्यों ना पठावो, उसके पीछे आप जम को क्यों भेजेंगे मेरे पास। जब आपने मेरे को अपना दर्शन दे दिया तो आपके दर्शन होने से जम कभी आ ही नहीं सकता। इस प्रकार कबीर जी महाराज जी ने इस पावन शब्द में हमारे को सिद्धांत दिया इस सूत्र से कि एक दुख राम राय कट हो मेरा, अग्न दह अर गर्भ बसेरा। ये सूत्र दिया है। इस सूत्र के द्वारा कहते हैं चिंतन करो कि जन्म और मरण का जो दुख है कट हो, इसको काट दो, आप समाप्त कर दो। कैसे करेंगे? राम राय, जो राम है ना, राजा का अर्थ क्या है? मालिक है। यानी मालिक का अर्थ क्या है? राम सबका अधिष्ठान है, राय का अर्थ है मालक, मालक यानी आश्रय, आश्रय मतलब अधिष्ठान। तो आप उस राम रूपी अधिष्ठान का चिंतन करो। एक जो दुख है ना आपका, कौन सा दुख है? जन्म और मृत्यु का। तो कैसे काटेंगे? एक राम राय, जब एक जो अधिष्ठान है ना उसका चिंतन करते करते हम एकत्व जब हो जाएगा हमारा राम के साथ, हमारी अभेदता हो जाएगी, तो कैसा प्रतीत करेंगे कि आत्म में राम, राम में आत्म, ऐसा हो जाएगा। और फिर हमारे को दर्शन कैसा होगा, हमारी दृष्टि अवस्था कैसी बनती है? सभी घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, यानी जो कुछ भी दिखाई पड़ता होगा ना हमारे को, केवल हमारा ही स्वरूप होगा, यानी हम राम हो गए। अधिष्ठान जो सबका है, जब एक ऐसा जो एकत्व दर्शन हो जाएगा, तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा एकत्व चिंतन करके, तो एक जो दुख है ना, अग्न दह और गर्भ बसेरा, अग्नि में जलने का और माता में गर्भ में आने का, उस दुख की निवृत्ति कर लीजिए एकत्व चिंतन करके, अभेद चिंतन करके। ऐसा पावन उपदेश आज कबीर जी ने हमारे को प्रदान किया। इस प्रकार जब हम चिंतन करेंगे तो जन्म मरण का जो चक्र है उससे अवश्य छूट सकते हैं। हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री स्वामी निर्मल जी महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जय।